थी उन्होंने उनके प्रति हमें इतना आसक्त क्यों उनके बारे बहुत सुना है तो ये मौत कहते नो ये कृष्ण को तो प्राण होने की एक तरीके क्या है दादा खोल रहा किसने पर सुनना तो किसने के बारे सुनना चाहिए तो हम देखो हर अध्याय में अर्जुन पूछते हैं और किसी उत्तर देता है लेकिन सप्तम अध्याय में कोई प्रश्न पूछा ही नहीं लेकिन किसी उत्तर देना शुरू होता है क्यों तो पूछना पूछना जरूरत नहीं कृष्ण जो बोलना चाहते हैं वो लाइन कर ले कृष्ण क्या बोला जो महत्वगत भक्त है वो श्रेष्ठ है वो होना चाहिए ये अर्जुन तुम जोगी बनो और जोगी कौन सा जमी महत्वगत मैं शुद्ध भक्त बनो और वो बनने का तरीका क्या है मेरा बड़ा सुनो तो सप्तम अध्याय एक नंबर श्लोक है वह प्रभुपाद ने बहुत इसके ऊपर बहुत लेक्चर दिया आप प्रभुपाद का लेक्चर पढ़ेंगे तो इसके ऊपर बहुत लेक्चर मिलेगा तो सप्तम सदन knowing Krishna by hearing about him. So, last में क्या बोला था कृष्ण मत गत प्राण कृष्ण गत प्राण आना चाहिए तो कृष्ण गत प्राण क्या होना एक एक बिंदी है एक ब्लड बोर्ड है इससे एक बिंदी है उसके बाद कितना कितना ध्यान कर सकते हैं चला नहीं लेकिन हम कोई वस्तु के बाद ध्यान करना चाहते हैं उसके बाद बहुत कुछ जाते हैं जन्म है कर्म है क्या किया है हा? तो उसको ध्यान करने की जरूरत है इसीलिए भगवान को ध्यान करने के लिए जब कर सकते इसलिए कृष्ण इतना कुछ लीला किया था कि और भी अच्छा जहां कृष्ण के बारे ध्यान कर सकते तो कैसे कृष्ण का तो प्राण हो सकते सिंपली बाई ज्ञान ही और उनके बारे सुनना था तो एक से तीन ही बोलना है तो कृष्ण के बारे क्या सुनना चाहिए केवल कृष्ण जो बाल लीला किया है कुरुक्षेत्र उपदेश दिया है रासलीला किया है इतना ही लीला है नहीं वह हम जो भागवत में देखते हैं अभी तक वो लीला शुरू हुआ नहीं हमेशा जो चर्चा हो रहा है कि वो विदुर मैत्र को और क्या है शुद्ध गोस्वामी जब है वो विषय सृष्टि जरूरपादन भौतिक जरूरत की सृष्टि हुआ है तो यह इतना इंपॉर्टेंट ये जानना बहुत जरूरी है इसीलिए चार से बारह वर्णन कर रहा है कि क्यों कृष्ण ये जो भौतिक जगत में जो प्रकृति है ये प्रकृति और ये जरा प्रकृति चिन्मय प्रकृति दोनों ही भगवान का थी नहीं कृष्ण मेटेरियल है स्पिरिचुअल है कृष्ण के बारे केवल जानना केवल कृष्ण किया क्या लीला किया उतना केवल नहीं है कृष्ण जो भौतिक एक भौतिक प्रकृति अचिन्मय प्रकृति वो जो उनका सृष्टि है वो भी जानना चाहिए कृष्ण से भौतिक
प्रकृति आध्यात्मिक दोनों ही जरा परा दोनों प्रकृति सृष्टि है। और ये भौतिक प्रकृति कम सृष्टि क्या नहीं है, लेकिन भौतिक प्रकृति के जो गुण है क्यों उन्हें सृष्टि का, फिर उन्होंने भी नियंत्रण नहीं कर रहा है। ठीक है आप तो सृष्टि क्या ठीक है, लेकिन तुम सृष्टि के नहीं, अभी उन्होंने फिर खुद ने नियंत्रण भी करा है। तेरा चैतन्य में बोला कृष्ण कंट्रोल्स द मोड्स, मोड्स ऑफ नेचर। तो कृष्ण को सृष्टि के नहीं, कृष्ण ने मोड प्रकृति का तीन गुण, तीन गुण को भी उन्होंने तो सृष्टि के नियंत्रण भी कर रहे हैं। तो जब भगवान प्रकृति तीन गुण सृष्टि किया है, नियंत्रण भी कर रहा है, वो हम उसके द्वारा नियंत्रित है, तो अब क्या करना चाहिए, सब कुछ जब उनके हाथ में है तो क्या करना चाहिए, हाँ क्या करना चाहिए, शरणागत आना चाहिए। जिस तरह दस बारह पुलिस हम कोई गलती किया, दस बारह पुलिस हमको पकड़ के रस्सी से खींच के लेके जा रहा है, तो क्या करना चाहिए, हाँ तो चलना चाहिए, ज्यादा जिसके पता सामने भी सब पीते ही मिलेगा, हाँ तो चलना चाहिए सब जाना है। तो जब किसने जब प्रकृति सृष्टि किया है और नियंत्रण नहीं कर रहा, सब उनके हाथ में है, तो हमें क्या करना चाहिए, जब हमारे हाथ में कुछ है नहीं तो क्या करना चाहिए, शरणागत होना, सिंपल बात है। लेकिन सब आदमी शरणागत होते हैं, जीते के आज हम नया सुन रहे हैं क्या, तो बहुत पहले से क्या जीते के आज पूर्वक सृष्टि किया कि बहुत पहले से, ये उपयोग तो बहुत पहले है, लेकिन ये बात सुनने के बाद कितना आदमी शरणागत हो रहा है, सब आदमी नहीं होगा। तो पंद्रह से उन्नीस उन्नीस ये वर्णन है, सब आदमी शरणागत होते हैं, जो पुण्यात्मा है वो शरणागत होता है, जो पापी व्यक्ति और कभी इतना भी सुनने के बाद भी शरणागत नहीं है, दी इंपायर्स नेवर सरेंडर। पायास भी तो जो पापी व्यक्ति है हाँ वो कभी शरणागत नहीं होते, और जो पुण्यात्मा है शुक्र दिवान है वो शरणागत होते। इस तरह नहीं जो गरीबी आता है कष्ट आता है भक्त बनेगा, नहीं गरीबी आने से भक्त नहीं होता, कष्ट आने से भक्त नहीं होता। पूर्वज उदाहरण देते हैं, जर्मनी में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सारे व्यक्ति लोग जब सैन्य उसका पति जब लौट नहीं आ रहा है, तो पत्नी गिरजा में जाके भगवान से प्रार्थना किया था ताकि हे भगवान हमको पति को अपहरण किया जाए, तनाव में अभी है भगवान बच गया, लेकिन जब भगवान आया नहीं सभी उसका पति लौट आया नहीं, तब उन्होंने बोला नहीं भगवान है नहीं, भगवान रहता था तू तो हमारे पति आता था, तो भगवान है नहीं तू वो तो कितने नहीं, तना होने से गरीबी होने से कष्ट होने से भक्त बनेगा, हो सकते भगवान आएगा लेकिन जब मिलेगा नहीं तो फिर अभक्त रहेगा। तो वो होने के लिए पुण्यात्मा होना चाहिए, शुक्रिय बनाना चाहिए, इस तरह गरीब होने से भक्त नहीं, जो गरीब है लेकिन पुण्यात्मा है वो केवल भगवान चलना। लेकिन क्योंकि कृष्ण के पास ही शरण लेना पड़ेगा, क्या देवता निर्विशेष ब्रह्मों के पास शरण लेना चलेगा नहीं क्या, ये वर्णन रहा है आगे, कि केवल भगवान के पास ही शरण लेना पड़ेगा, कि दूसरा आदमी कुछ हम मदद करेगा नहीं, देवता लोग कुछ नहीं करेगा, निर्विशेष ब्रह्मों का ध्यान करेगा कुछ नहीं मिलेगा, सरेंडर टू डेमिगॉड एंड इम्पर्सनलिज्म। कोई आदमी इतना कुछ सुनने के बाद भी देवता को शरण लेते हैं, हाँ निर्विशेष ब्रह्म को शरण लेते हैं, तो अभी ये प्रकृति से मुक्त होने का तरीका क्या है? फ्रीडम बाय नोइंग कृष्णा। सब नहीं जान सकते भगवान को, हाँ, ये देवता लोग देवता शरणागत होता है निर्विशेष ब्रह्म में, लेकिन कैसे मुक्त हो सकते? एकमात्र कृष्ण को जानने से। पहले शुरू हुआ कृष्ण जानना और फिर खत्म हुआ कृष्ण के जानना थे, श्रवण करना थे उसके बाद उनके बाद। तो हम पहला नंबर श्लोक से देखेंगे, ये श्लोक पूर्वत बहुत बार इसके ऊपर क्लास दिया। मैया शक्त मन पार्थ जुगम जुंजन मदास्त्र असंशयन समुद्रमा यथा यशी तत्ण। ये पूर्वा तत्ण के शब्द को बहुत लिखा दिया, तत्ण श्रवण कर, इसलिए श्रवण कर, श्रवण करना बहुत जरूरी है। किसने कहता है, हे अर्जुन मेरा पति तुम्हारे मन चित्त सब निविष्ट करो मन, और इस तरह दुर्गाभ्यास करो, और इस तरह सारे संशय से मुक्त हो सके। किस तरह? वो अग्नि अभी बोलूंगा तुम श्रवण करो अर्जुन। हाँ, मैं आशक्त मेरा पति आशक्त अभिनिविष्ट चित्त होकर योग करो, हाँ, तो तुम सारे सारे निश्चय असंशय समुद्रम निस्संदेह सारे संशय से मुक्त हो जाओगे। तो कैसे? मैं अभी बदलाऊंगा तुम श्रवण कर। तो हम देखते हैं क्या जो ये सातवां अध्याय चल रहा है, हाँ, गीता में प्रभुपाद आठवां अध्याय कैसे भाग किया? पहला अध्याय का क्या बोला? कर्म षटक, कर्म जोग नहीं षटक, छह अध्याय ना षटक। और लास्ट अध्याय क्या बोला? ज्ञान षटक। और बीच वाला क्या? भक्ति शतक। तो बीच में क्यों रखा? सुरक्षित, जितना इंपॉर्टेंट चीज है उसको बीच में रखना पड़ेगा। दूसरा, हम हाथ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाथ जो है ये खाने के अंदर रख देना पड़ेगा, इतना इंपॉर्टेंट चीज है। जितना इंपॉर्टेंट उसको आंदोलन में रखना चाहिए। ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट है, ऊपर बाल है, उसके रिश्ता से रखा है, उसके हड्डी है, उसके नीचे पानी है, उसके अंदर से ब्रेन है, ये इतना गुरुत्वपूर्ण चाहिए। तो कर्म और ज्ञान के बीच में इस तरह बीच में भक्ति करते हैं। और ये सात नंबर अध्याय है भक्ति क्षेत्र का पहला अध्याय, यहाँ से भक्ति क्योंकि सारे गीता में भक्ति के बारे में बोला है, लेकिन यह स्पेशल केवल भक्ति है। पहले से अध्याय है, यह क्या वर्णन है? वो मन को लास्ट में क्या बता, मन को कैसे नियंत्रण करके योगी बनना चाहिए। और वो देखे लास्ट में कृष्ण ने क्या बोला, वो मन को एकाग्र चित्त श्री कृष्ण चरण में अर्पण करना चाहिए। तो इस तरह कृष्ण भावना से जब लाभ होता है, हाँ, तो आप वो जीवन का पूर्ण सफलता है। विभिन्न योग प्रणाली, हाँ, जो योग का पहले एक सीढ़ी है, कृष्ण का जानने के लिए अलग अलग एक पदक सुरक्षित है, लेकिन कृष्ण भक्ति है यह डायरेक्ट। तो भगवत गीता के पूर्व तात्पर्य में यह श्लोक वर्णन कर रहा है। तो षष्ठ अध्याय का लास्ट में जो निर्देश दिया है वो इसके निर्देश क्या है? संस्कृति के राष्ट्र के निर्देश दिया जोगी नाम में सर्वेश्वर मत गति नाम तरह। तो भगवान के मन में निविष्ट करना, तो उसके पूर्व बोला इसलिए क्या करना चाहिए? नवदा भक्ति अनुशीलन करना। तो सर्वप्रथम एक के गुरुत्वपूर्ण श्रवणम, भगवान इसलिए अर्जुन के तत्ण मेरा पास श्रवण करो। तो भगवान की निर्भर करके सूत्र किया है श्रवण करने के लिए, तो भगवान खुद नहीं बोल रहा है तो वह जो सुनने का अच्छा लगा कहा मिलेगा। भागवत में ये जो तात्पर्य में जो श्लोक दिया है ना, ये प्रभुपाद का बहुत फेवरेट श्लोक है, इसको बांग्ला में गान भी लिखा है, छिन्नतांश कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, ये जो है इसको प्रभुपाद का बांग्ला गान है, मालूम है कौन सा? मार्किन भागवत धर्म, मार्किन भागवत धर्म गान के अंदर प्रभुपाद ये श्लोक भी, ये पांच श्लोक दिया। तो उसने बोला मैं ज्ञान रहूंगा तो श्रवण करा, कौन ज्ञान है? केवल ज्ञान ही नहीं देगा, ज्ञान के साथ क्या देगा? विज्ञान उपलब्धि हो जाएगी। ज्ञानम ते अहम सभी ज्ञानम इदम बक्षा अशेषत, अशेषत अर्थात संपूर्ण रूप कोई अशेष नहीं, बचा नहीं रहेगा, अशेष अशेष अर्थात शेष नहीं रहेगा कंप्लीट। तो कृष्ण बोला मैं तुमको ज्ञान विज्ञान के साथ बताऊं, ज्ञानम एवं सविज्ञानम इदम बक्षा में, तो ज्ञान सुनने क्या फायदा होगा? जब ज्ञाता निहम हुए अन्य ज्ञाता कौन हुए, जो ज्ञान प्राप्त करने से दूसरा आप सुनने का कोई जरूरत नहीं, सुनने का कोई बाकी नहीं रहेगा। तो कृष्ण क्या बोल रहा है, मैं अभी जो ज्ञान दूंगा वो ज्ञान सुनने के बाद दूसरा सुनने का कोई जरूरत नहीं, क्यों? सब जान चुके हैं, अभी जो ज्ञान देंगे ये जानने से सब कुछ जाना हो जाएगा, तो वहां दूसरा को सुनने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये जो ज्ञान दे रहा है, सब आदमी ज्ञान तो दे रहा है, सब आदमी को प्राप्त कर सकते हैं, स्कूल में तो बहुत स्टूडेंट जा रहा है, तो सब आदमी स्टूडेंट का अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं, टीचर तो एक ही परंपरा है कि सेम पुस्तक है सेम टीचर है सेम स्कूल है, सबको रिजल्ट देखते हैं। मनुष्य नाम छेषु अश्लित जनदेश, इलेक्शन में खड़ा हो गया सब जीतेगा नहीं, दो चार आदमी मनुष्य नाम छेषु पश्चिम जीता, हजार हजार आदमी के अंदर दो एक आदमी क्या करते हैं सिद्धि लाभ करने के लिए प्रयास करते हैं, और जिन्होंने प्रयास कर रहा है जतदाम की सिद्धि नाम क्वश्चित मांग, जो प्रयास कर रहा है उनमें कोई कोई क्या करता है सफल होते हैं। मुक्ता नाम सिद्ध नाम कुटी कुटी मुक्ति कामी के लिए दो एक आदमी नारायण पारायण नारायण तो भक्ति करते हैं, जगदाओ सिद्धानंद मांग। तो इस तरह कृष्ण मुक्त कैसे मांग सकते हैं? प्रबोध कहते हैं एक है वो सुनिए, अत श्री कृष्ण नामादि नाम हमें राज्य में निकले, कृष्ण कृष्ण जो क्या वस्तु है इंद्रियों से हम नहीं समझ सकते, न भवत गाजी इंद्रिय शिवन मुखे दिव्यादो, सुने इंद्रिय के द्वारा कभी भी कृष्ण से नहीं जान पाएंगे। भक्ति के द्वारा जब भगवान प्रसन्न होता है तो उसने भगवान प्रसन्न शिवन मुखे सेवा करने और सेवा कहां से शुरू होता है? जिह्वादो जिह्वा से जो सेवा शुरू होता है, बहुत सेवा करना चाहिए लेकिन जिह्वा से शुरू करना चाहिए, क्यों क्यों? तो सब से बदमाश जितने इंद्रिय है ना बदमाश, तो सुना कभी जिह्वा सबसे बदमाश, जितने इंद्रिय सबसे बदमाश है ये सुना कभी आप? कभी सुना कोई बोला किसी को? सुना तो नहीं, बोला किसी को? रोज बोल रहा है तार मध्य जिब्बा होती लोभमय सूर्य मध्य, जितना सारे बदमाश हिंदे हैं तार में सबसे बदमाश कौन है? जिब्बा, तार मध्य जिब्बा होती लोभमय सूर्य नियंत्रण का ना बहुत कठिन है। तो इसीलिए नियंत्रण कैसे दो काम है, प्रसाद खाना और भगवान का नाम कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। तो अभी कृष्ण वर्णन करेंगे भगवान का, क्या वर्णन करेंगे? ज्ञान ज्ञान के साथ। जो पहले के वर्णन भगवान उनका शक्ति के बारे में वर्णन कर रहे हैं, उसका पराशक्ति अपराशक्ति, परातत्व है परम श्रेष्ठ, अपरातत्व निकृष्ट, इन्फीरियर और सुपीरियर। तो कृष्ण बोला भूमिराप अनलवायु हम मनोबुद्धि अहंकार नित्यों में भिन्न प्रकृति राष्ट्र है। ये कितना प्रकृति है इसके अंदर? आठ, पांच स्थूल और तीन सूक्ष्म। ये क्या प्रकृति? अपराध भिन्न प्रकृति क्यों बोला? हाँ, ये दर्जा खुल रहेगा तो हवा आ जाएगा ना। भिन्न प्रकृति क्यों बोला? भगवान का प्रकृति लेकिन भिन्न। कोई बात उदाहरण देते हैं, कोई बात बोला मैं जो लेक्चर दे रहा हूं, मेरा लेक्चर आप लोग कैसेट में रख रहे हैं, तो कैसेट में दूसरा बात पे मेरा लेक्चर भी चलेगा कुछ टाइम बाद, लेकिन मैं उनके अंदर नहीं हूं, लेकिन वो मेरा शक्ति भी है। मैं वो कैसेट नहीं हूं लेकिन वो भी मेरा शक्ति है। तो वो शक्ति कौन है? भिन्न। जिस तरह गाय और गाय का दूध, गाय का जो दूध है गाय की शक्ति है लेकिन दूध गाय नहीं है, वो गाय के क्या है? भिन्न शक्ति है। तो ये प्रकृति है, भगवान की सृष्टि है लेकिन वो भगवान वो नहीं है, लेकिन भगवान की शक्ति है। भिन्न प्रकृति रष्टदा। लेकिन ये आठ स्वर के कृष्ण बोला और है, ये तो ये क्या है? निकृष्ट है लेकिन उत्कृष्ट प्रकृति है। वो क्या? अपरियमित स्तना प्रकृति में जो ये जो आठ प्रकृति वर्णन है ये क्या है? अपरा निकृष्ट, लेकिन एक उत्कृष्ट प्रकृति है। वो क्या है? जीवभूतम महावायो जयदम झाड़ी कर। वो क्या है? जीव, जीव शक्ति। तो ये है, तो क्या दो प्रकृति क्या है? एक उत्कृष्ट है निकृष्ट। निकृष्ट कौन है? ये आठ प्रकृति है। और उत्कृष्ट कौन है? जीवात्मा। तो दोनों ही प्रकृति है। तो प्रकृति जब प्रकृति है तो और एक शब्द क्या आता है? पुरुष। तो पुरुष कौन है? पुरुष है भगवान। तो पूर्वा तात्पर्य में कहता है हो सकते जीवात्मा उत्कृष्ट प्रकृति है, हाँ, और भौतिक प्रकृति निकृष्ट है। प्रकृति उत्कृष्ट व निकृष्ट जो है तो ये उनका नाम क्या है? प्रकृति है, वो पुरुष का अधीन है। ये उत्कृष्ट होने से इस तरह पुरुष श्रेष्ठ है, ताकि उत्कृष्ट के कितने प्रकृति है। हाँ, जिस तरह हमारे यह प्रेसिडेंट का पोस्ट है लेकिन उसके सामने जो लिखता है टेम्पल प्रेसिडेंट, ताकि टेम्पल के अंदर में है इस तरह देश का नियंत्रण कर रहे हैं, उसका प्रेसिडेंट के सामने क्या शब्द है? टेम्पल प्रेसिडेंट। ये है वो इस तरह ने देश को नियंत्रण कर रहा है। इससे जो उत्कृष्ट है ये उत्कृष्ट साथ एक शब्द क्या है? जरा है प्रकृति। तो उत्कृष्ट निकृष्ट जो है लेकिन साथ में एक शब्द क्या है? प्रकृति। जीवात्मा उत्कृष्ट प्रकृति है लेकिन प्रकृति है नियम, ये नियंत्रित है, नियंत्रण नहीं। तो भगवान ये दोनों के नियंत्रण कर रहे हैं। ये तो चुनिनी भूतानी सर्वान्वित उपधारण जगत प्रभाव प्रदान। हे अर्जुन, ये जो दो प्रकृति है उत्कृष्ट निकृष्ट दोनों मेरा मुझसे उत्पन्न हो रहा है, और केवल उत्पन्न नहीं है प्रभाव प्रलय स्तर था, सृष्टि हुआ है नियंत्रित, मैं भी नियंत्रण भी कर रहा हूं। तो आप एक प्रश्न आ सकते हैं, आप अकेला करा है दूसरा कोई नहीं है आपसे जो बड़ा कुछ? तो कृष्ण फिर बोला नहीं, क्लियर करा है मत्त परतर नान्यत। नान्यत शब्द का अर्थ क्या है? न उन्नत, मेरा से बड़ा कोई है। कितना क्लियर कर रहा है ताकि थोड़ा मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं मिलेगा। कृष्ण क्लियरली बोला है मत्त परतर नान्यत, मेरे से बड़ा कोई है नहीं। कृष्ण तो बहुत बार बोला असम ऊर्ध, भगवान का समान तो नहीं है, ऊर्ध भी कह रहे, लेकिन यह क्या बोला है? मत्त परतर नान्यत, मेरे से बड़ा कोई है नहीं, लेकिन मत्त परतर नान्य किंचित अस्थित, किंचित थोड़ा सा भी नहीं है। अस्ति किंचित अस्ति अर्थात थोड़ा है, किंचित अस्ति थोड़ा है, लेकिन कृष्ण बोला नहीं कुछ में थोड़ा सा भी मेरा से बड़ा कुछ नहीं है। मत तो बोला था नान्य किंचित अस्ति ध्यान दो मोई सर्वमिदम प्रथम सूत्र मणि बनाए वो सब कुछ मेरा अंदर में युक्त है। ये किया किया किसके साथ दिया काम? हार। लेकिन ये हार कैसे कैसे बना है? मानो एक एक मोती है, इसे फूल का माला वाला। हम जब भगवान की किसके माला बनाते हैं? फूल का माला बनाते हैं। और हम कोई बोलता है फूल और धागा का माला है, बोलता है कभी? धागा उसके अंदर है, लेकिन हम कभी नहीं बोलते हैं किसके माला बने हैं? फूल और धागा का माला बोलते हैं नहीं। हम किसके माला बोलते हैं? फूल का माला है, लेकिन वो फूल का माला हो सकते धागा सर के? धागा सर के कभी माला नहीं हो सकते, लेकिन धागा नाम ही नहीं बोलते क्योंकि दिखाई नहीं देता ध्यान में। फूल का देखेगा तो फूल काट देगा, नहीं दिखना नहीं चाहिए। तो दीदी माला कैसे माना है? सूत्र है मणि गाना है वो मणि कहा रहता है सूत्र है जितने सूत्र बना है, लेकिन किसके माला बोलते हैं? मोनी का माला बोलते हैं, छूते का माला नहीं बोलते। तो इस तरह दुनिया में सब कुछ है भगवान का स्तुति करते हैं, लेकिन भगवान का नाम कोई नहीं लेते हैं। जिसमें छूते का नाम धागा का नाम कोई नहीं लेते हैं। धागा ने सब कुछ एक जगह कर रखा, लेकिन क्योंकि उनको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसीलिए उनका नाम कोई नहीं ले रहा है। तो सारी दुनिया जितना कुछ है भगवान सबका अंदर परमात्मा रूप में सबको एक जगह रख दिया। हाँ मोई सर्वमिदम प्रथम सूत्र मणि का नहीं बोल, लेकिन भगवान का नाम क्यों नहीं लेता है? तो क्यों उनको दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको देखेगा उनका नाम लेगा। जिस तरह हम का फूल का हार बोलते हैं, तो ये चीज बोलना सहज है, लेकिन भगवान किस तरह है? सब कुछ अंदर में है, इसका तो एग्जाम्पल द्वक है। यहां फूल का ये सूत्र मणि का नहीं दिया, और किसने सब कुछ के अंदर में है, और उन्होंने सब कुछ वो अंदर में रहकर सबको एक एक जगह करके रखा। इसका तो एग्जाम्पल है। किसने भगवत गीता में दे रहे हैं बहुत एग्जाम्पल है। रसो हम अपशु कौन थे हो प्रभास में, पानी का साथ कौन है? ये पानी का साथ है भगवान है। सूरज का जो रश्मि है वो भगवान है। प्रणव सर्व वेदेशु शब्द के पौरुष में, सारे वेद का प्रणव है और शब्द का आकाश का शब्द है और मनुष्य का पौरुष है शब्द। तो इस तरह भगवान आ शिक्षण रूप में सब कुछ अंदर रहकर उसको क्या कर रहे हैं? नियंत्रण कर रहे हैं। सूत्र मणिगण है प्रथम, तो यह श्लोक का तात्पर्य प्रभुपाद ओंकार के बारे में बोला है। तो कोई कोई आदमी ओंकार बोलते हैं, आज भी कोई एक आदमी के साथ, हाँ एक आदमी के साथ बोल रहा था। तो गीता के मुख्य मुख्य श्लोक है, उसके अंदर एक श्लोक उन्होंने बताया कि भगवान बोला जो ओंकार बोलना चाहिए, हाँ ओम इतिक्षक करम ब्रह्म व्यवहारण मनुस्मरण जब प्राति त्याजन्य सजाती परमांगति। तो गीता में किसने क्या बोला? ओम उच्चारण करके देह तक करना चाहिए, करेगा तो मेरा पास आ जाएगा। हाँ सच है। तो पूर्व तत्व ने कहा जब निर्विशेषवादी लोग परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का असंख्य बहुत नाम है वह संबंधन करते बहुत डरते हैं लोग, इसीलिए वो लोग भगवान का जो अप्रकृत शब्द ओंकार उच्चारण करते हैं। इतने बहुत नाम है कौन सा लेगा, लेकिन वह बोलने डरते हैं इसीलिए वो लोग केवल ओंकार उच्चारण करते हैं। लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं कि ओंकार ही भगवान का एक श्री कृष्ण का शब्द है। गीता क्या बोला? प्रणव सर्वपेदेश, ये प्रणव जो है वो भगवान की शक्ति है। ये आगे और कुछ श्लोक में कृष्ण किस तरह सूत्रमणि बनाई वो है वो व्याख्या कर रहा है विभिन्न उदाहरण से। नौ नंबर श्लोक में पुण्य गंध पृथ्वी व्यंग, पृथ्वी का जो गंध है वो भी कृष्ण है। तेजस्वी गावशु, हाँ अग्नि का तेज है, जीवनम सर्वभूतेषु, हाँ सारे जीव का जीवन है। और तपस्या
का तप है, बीजोंगम सर्वभूतानाम सारे जीव है, स्थावर जंगम जितना सारे जीव है, हाँ बीजम बीज है, विद्धि पार्थ सनातनम में सारे जीव का सनातन कारण हूं, बुद्धिर बुद्धिमताम अश्मी, हाँ जितना बुद्धियां देखती है वो तो बुद्धियां देखती है बुद्धि भी मैं हूं, और तेजस्वी नाम हम शक्तिशाली जितना व्यक्ति है तेजस्वी व्यक्ति है उसका तेज भी मैं हूं। बलंग बल वतांगता हम कामोरा को विवर्तित, जितना बलशाली व्यक्ति है उसका बल मैं हूं, बलवान का वो जो बल है, लेकिन वो बल फालतू काम में नहीं लगाते हैं, ये अर्जुन का शक्ति है, वो क्या इंद्रदीप्ति में लगाया था, हनुमान का जो बल है उन्होंने इंद्रदीप्ति में लगाया था, जब हम देखते हैं हनुमान जी सीता देवी को ढूंढने के लिए गया, रात में जो लंका में गया बहुत औरत, लेकिन वो काम गलत प्रभावित नहीं हुआ, ये जो शक्ति है कामोरा का विवर्तितम, काम राग विवर्तित बल है वो कृष्ण का है। धर्म विरुद्ध से भूतेषु काम अश्मर, और धर्म का जो अविरोधी काम है प्राणी ज्ञान का वो भी कृष्ण है। तो इतने कितने एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत तो वो देगा तो गीता पूरा गीता उसमें भर जाएगा, इसलिए कृष्ण कहता है जे चैव सात्विक भाव राजस्व तमस अश्मिये मत्त विदितान विद्धि न तो हम कैसे मई। तो जीव का जो सात्विक राजसिक तामसिक जो भाव जितना उत्पन्न होता है वो मुझसे उत्पन्न होता है, जितने भी वो मुझसे उत्पन्न होता है, लेकिन मैं उसको अधीन नहीं, सब सब मेरा ही अधीन है, और क्या मेरा अधीन, और सारे जगत को मैं क्या करता हूं, ये तीन गुण द्वारा मैं बंधन में रखता हूं, त्रिभीर गुण मोही भाव ये भी सर्वमिदम जगत मोहितम ना भी जानाती मामे जो परम जो तीन गुण है, ये 13-14 नंबर श्लोक में वर्णन आ रहा है, कैसे तीन गुण से जगत साल जीव को बाधा, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण 14 नंबर श्लोक में आगे जाकर बोलेंगे, इसीलिए क्या करना चाहिए शरणागत होना चाहिए। जो तीन गुण सत्य राजोत्तम ये द्वारा मोहित होने के कारण आदमी नहीं जानते हैं कौन से भगवान, ये सारे चीज कौतित है वो अव्यय है, तो फिर भी आदमी वो क्या करना कोशिश करते हैं, उसके साथ लड़ाई करने का कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि वह शक्ति किसका है, कृष्ण का है, इसीलिए कृष्ण बोला दैवी से गुणमयी मम माया, ये मेरा माया है और ये दैवी है, तो इसीलिए इसको क्या है दूरतया, दूरतया शब्द का अर्थ क्या है, इसको अतिक्रम करना लगभग असंभव है, लगभग ये वो असंभव नहीं है दुष्कर है, लगभग असंभव, कैसे अतिक्रम कर सकते हैं, माँ में वो जो प्रपद्यन्ते जो भगवान के शरण लेते हैं माया में दंत तरंती थे, प्रभुपाद प्रसंग में वो भी उदाहरण देते हैं, आप किसी को घर में गए हैं तो घर में एक कुत्ते हैं, कुत्ते आपको अटैक किया तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, मालिक को बुलाएंगे, जब मालिक बुलाएंगे तो मालिक हे भुलू लालटू इधर में आ जा, तो आया तो मालिक वो कुत्ते क्या समझ गया, ये मेरा मालिक के शत्रु नहीं है, मेरा मालिक का मित्र है, जब वो साथ में घर में आते बैठते हैं तो कुत्ता क्या करते हैं, वो आपका पेड़ में आके पेड़ बैठ के वो पूछे इस तरह लेते हैं बहुत प्रेम से, नहीं मैं तुमको सुरक्षा प्रदान करूंगा कोई डरना मत, तो जो कुत्ते पहले इस तरह करते थे अभी इस तरह क्यों कर रहे हैं, एक मिनट पहले जो कुत्ते इस तरह किया अभी उसको
अभी अभय प्रदान कर रहा है, हाँ तुमको कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं तुमको देखभाल कर रहा हूं, इतना प्रोटेक्शन क्यों दे रहा है? ताकि उनको मालिक उनको समझा दिया जे मेरा आदमी है। तो उसी तरह पूर्वत कहते ये माया एक कुत्ते का तरह है। तो कुत्ते का तरह इसीलिए वो कुत्ते के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। तो कुत्ते का जो मालिक है उनको केवल बुलाना, मामा मैं घर में आ गया, चाचा जी आ गया। तो यह बोलने से जब आज है घर का मालिक, तो वो जब नियंत्रण कर तभी संभव है, हमारे द्वारा कुत्ता को नियंत्रण करना संभव नहीं। ये क्वेश्चन में पूर्वत और एक अच्छे उदाहरण देते हैं, ये माया किस तरह से उदाहरण दिया? कुत्ते के साथ, कुत्ते के घर में हाथ में क्या, गले में क्या रहता है? रस्सी, रस्सी रहते हैं ना, वो रस्सी क्या करना चाहिए? जब चलते कुत्ते चलते हैं, वो रस्सी क्या मालिक के हाथ में रखना चाहिए। मालिक के हाथ में नहीं रहेगा तो बहुत मुश्किल करेगा। तो ये माया है उसको भगवान के पास में रखना चाहिए, हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो रस्सी के एक अंश आप कृष्ण के हाथ में रखना चाहिए, हमें उसको नियंत्रण नहीं करना चाहिए। तो इसलिए क्या करना चाहिए? कृष्ण क्या उपदेश दिया? मां में वो जो प्रपद्यन्ते, मेरा प्रपद्यन्ते शब्द का अर्थ क्या है? शरणागत है। तो मेरा जो शरणागत होता है तो माया का अतिक्रम करता है। तो कृष्ण क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? शरणागत होना चाहिए। लेकिन सारे आदमी शरणागत होते हैं क्या? कौन आदमी नहीं होता है? चार प्रकार आदमी के वर्णन दिया प्रभुपाद, बहुत प्रेम से बहुत बड़ा तात्पर्य दिया है। वही एक जगह वर्णन किया प्रभुपाद का दिव्य उन्माद होना है, प्रभुपाद का तात्पर्य है। हाँ, जिस तरह भक्त का प्रेम का लक्षण क्या है? अष्टशतिक विकार है, आंखों में से आंसू आना, नृत्य करना, ये बहुत कुछ है, प्रेम का लक्षण है। और प्रभुपाद का लक्षण है जो तात्पर्य लंबा हो गया, इसका अर्थ उनका दिव्य प्रेम का उन्मादन आ गया, प्रेम से लेख रहा है बहुत कुछ है। प्रभुपाद तात्पर्य है उनका दिव्य प्रेम का उन्मादन है। तो यह प्रभुपाद बहुत खुशी से पूर्वतन आचार्य ने बोला थे विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक एक शब्द का बहुत लंबा लंबा व्याख्या किया है। ये चार प्रकार आदमी को जिस तरह जो शक्तिशाली व्यक्ति है, योद्धा है, उसको लड़ाई करने के आदमी आते हैं ना, उसको बहुत मजा आते हैं, आपको खुशखुश करते हैं, कब लड़ूंगा उसके साथ। तो जब ये श्लोक मिल गया सारे आचार्य जी ने बहुत लंबा लंबा तात्पर्य दिया, ये जो चार दृष्टिधिकारी है इसको बोला मिल गया उसको कुछ बोलने का। तो मोरो नराधाम ये चार प्रकार दृष्टिधिकारी किया है, मोरो नराधाम माया का तरह जिसके ज्ञान अपहृत है, और क्या किया? असुरम भाव। ये चार प्रकार व्यक्ति भगवान का शरण नहीं लेते। ये तात्पर्य पढ़ना बहुत अच्छा अच्छा है। प्रभुपाद एक प्रकार व्याख्या दिया और आचार्य जी ने और अलग अलग बहुत बहुत अच्छा अच्छा एग्जाम्पल। यह प्रभुपाद उदाहरण दिया मूरो का, चार प्रकार जो भक्त है ना भगवान शरण में, तो एक नंबर है मूरो। मूरो का उदाहरण किया है गाधा। गाधा का उदाहरण तो देना जरूरत नहीं, तो यह तो बहुत बार सुना प्रभुपाद अच्छा बोला। लेकिन गाधा तो गाधा है, उसका नाम भी गाधा है, बुद्धि तो गाधा है, नाम भी गाधा है। और केवल इतना ही नहीं है, उनका जो मालिक है वो भी छोटो लोग है। वो क्या धोबी क्या, धोबी क्या, उसका खुद का तो बुद्धि नहीं, नाम में तो इस तरह गाधा है, उसका जो मालिक है वो भी गाधा का, उसके तरह धोबी है। बड़ो लोग का तो नगर होता तो फिर भी अच्छा है। तो गाधा का परिचय यह है, ये मूर है, ये सामान्य को उदय पूर्ति के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। यह पढ़ लेना किस तरह बोझा वहन करते हैं। नौकरी करने के लिए गाधा के तरह परिश्रम करते हैं। गाधा जहां पे बाजार में सेल होते हैं, आप देखा जो गाधा जहां पे सेल होते हैं ना, वो पास में बहुत बोझ रखते हैं। क्योंकि जो कोई बोलेगा हमारे गाधा 5,000, वो बोले नहीं हमारे गाधा 6,000 है। उनको गाधा तो केवल 50 किलो उठाते हैं, हमारे गाधा 60 किलो उठा सकते हैं। तो हमारे उसके 5,000 है तो हमारे 6,000 होना चाहिए। तो गाधा का भाव क्यों ज्यादा आता है? जो ज्यादा बोझ ले सकते। इसी तरह भौतिक जगत में जो पढ़ाई करने के बाद जो बड़ा बड़ा भोजे का डिग्री लेके गधे लोग अलग अलग कंपनी में जाता है। देखो हम इतना भोजे हैं, हम आपको 10 घंटा 12 घंटा 24 घंटे आपका आपके लिए परिश्रम कर सकते हैं, इतना बड़ा गाधा है, इसलिए हम नौकरी ज्यादा देना चाहिए, सैलरी ज्यादा देना चाहिए। दूसरा है नराधम, तीसरा है माया का द्वारा जिसका ज्ञान अपूरित है, और चौथा है जो आशुरंग। यह पूर्व तत्व लास्ट में बोला ये जो नास्तिक है, महाजन का उपदेश श्रवण करने के बाद भी कभी भी परम पुरुषोत्तम भगवान श्री के चरण में शरणागत नहीं होते, शुद्ध भक्त का मुक्ति सुनने के बाद भी नहीं होता, ये इतना खतरनाक है। लेकिन चार प्रकार व्यक्ति है वो सुकृतिवान है, वो क्या है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी चा भरतर्षभ। ये चार प्रकार व्यक्ति क्या करते हैं, भगवान के पास आते हैं, तो सारे आदमी नहीं आते हैं, आर्तो अर्थ से जिज्ञासु होने से नहीं आता है, लेकिन एक साथ एक गुण होना चाहिए साथ में, कौन सा, सुकृतिवान। सुकृतिवान नहीं होगा तो फिर कभी भी आएगा नहीं। तो आर्तो, आर्तो का उदाहरण पूर्वत क्या दिया, गजेंद्र कि ना ताना में पड़ गया भगवान के पास था। आर्तो जिज्ञासु कौन है, जिज्ञासु का उदाहरण पूर्वत क्या दिया, हाँ धर्मचंद्र ऋषि जिज्ञासु। अर्थार्थी क्या उदाहरण किया दिया, ध्रुव महाराज रुपया के लिए संपादा के लिए भगवान को पास गया। ज्ञानी क्या उदाहरण किया दिया, सुखदेव गोस्वामी चतुष्कुमार। तो हम तो हम नॉर्मल क्या बोलते हैं, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी इस तरह आते हैं, लेकिन यह गीता में क्या बोला, आर्तो जिज्ञासु अर्थात क्योंकि ये आर्तो होने के बाद ताना होने के बाद जिज्ञासु स्तर में आते हैं, वो भी अर्थार्थी, वो दोनों का बीच में है, क्यों बीच में, तो अर्थार्थी लोग जिज्ञासु स्तर आते हैं और आर्तो जिज्ञासु स्तर में आते हैं, धीरे धीरे इस तरह अग्रगति लाभ करते हैं। और इनमें से श्रेष्ठ कौन है, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशेष्यते प्रिय ही ज्ञानी तत्त्वम अहम सच मम प्रिय। ये चार प्रकार व्यक्ति में कौन है श्रेष्ठ, कौन है ज्ञानी, क्योंकि ज्ञानी क्यों प्रिय है, क्योंकि आला के तीन प्रकार आदमी है तो तनाव में भर के भगवान के पास आया, आते हैं फिर भी कुछ समस्या लेके आया, लेकिन ज्ञानी लोग भगवान समस्या लेके नहीं आया है, जिनमें से सब उधर है, सब अच्छे हैं, उधर सर्वैते ज्ञानी तत्व मे मतम अस्थित सही जुगजुक्तात्मा मामेव अनुत्तमांगति। ये सभी महात्मा है, लेकिन जो ज्ञानी है वो तत्वगत में जानते हैं, हाँ मुझका आश्रय करते हैं और मेरा अपराकृत सेवा में युक्त है, मुझको लाभ करते हैं। तो कितना दिन बाद लाभ करते हैं, हाँ तो आज तो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ कौन है, ज्ञानी। तो ज्ञानी व्यक्ति को भगवान प्राप्त करने कितना दिन लगेगा, बहुना जन्म मानते हैं, वो ज्ञानी व्यक्ति को बहु जन्म लगेगा भगवान को जानने के लिए, बहुनाम जन्म न मानते ज्ञानवान प्रबद्ध। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो मेरा शरण में आते हैं, कब हमेशा नहीं आता है, बहु बहु जन्म के बाद ज्ञानी व्यक्ति मेरा शरण में आता है, कब कब, वो ज्ञान के द्वारा जब उनको मालूम पड़ेगा जो कृष्ण सब कुछ का मूल है वासुदेव शर्म, तभी आते हैं, लेकिन जब तक पता नहीं चलता तब तक घूमते रहे घूमते रहेगा। तो भक्त लोग को, भक्त लोग, हाँ भक्त लोग को कितना दिन लगेगा, हाँ भक्त लोग को कितना दिन, ज्ञानी व्यक्ति का बहुत जन्म लगेगा, भक्त लोग कितना दिन लगेगा, हाँ तुरंत तो ज्ञानी को तो इतना जन्म जन्म लगते हैं और भक्त का तुरंत होता है तो उनका जन्म जन्म क्यों नहीं लगता है क्या? इसको अच्छे हैं वो पहले पिछले जन्म में पार चुका है, वो पार हो चुका है, देखिए वो बहु जन्म इसको ऑलरेडी हो गया है, अभी केवल आपके पास इतना बाकी था वासुदेव में शर्म में थी सब कुछ करके कृष्ण को भक्ति करना चाहिए उतना ही थोड़ा आता बाकी था, लेकिन जो अभी जो भक्ति कर रहा है तो कुछ अरे इतना ज्ञानी आदमी इतना दिन से कर रहा है उसको नहीं हो रहा है ये थोड़ा भक्ति कर रहा है चल गया। हाँ क्योंकि ये पिछले जन्म में वो पहले कर चुके हैं, जिसका पास एक IIT का डिग्री है कोई बच्चा लग बोलता अरे हम इतना दिन से ABCD पढ़ाई कर रहे हैं वो एक दिन में इतना बड़ा डिग्री मिल गया? नहीं वो पहले ये पढ़ चुके हैं, हम देखे नहीं वो कब ABCD पढ़ा है, ये 1 2 3 4 5 कर कब कंप्लीट किया होता है हम देखा नहीं, लेकिन जब IIT डिग्री है जब लेगा परशुराम दास IIT उसके साम परशुराम दास क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 5 डिस्टिंक्शन क्लास 10 गोल्ड मेडलिस्ट 12 IIT क्वालिफायर तार लिखने कोई जरूरत नहीं है। जो भक्त हैं इसके अर्थ क्या वो पहले कंप्लीट करते हैं। लेकिन एक प्रश्न आते हैं कि ये इतना सरल है तो फिर सारे आदमी क्यों ये सरल पंथ का ग्रहण नहीं कर रहे हैं? जो ज्ञानी व्यक्ति को बहुत बहुत जन्म जन्मांतर लगते हैं वो भक्ति करने से तुरंत मिलते हैं तो फिर ये सरल पंथ क्यों नहीं लेते हैं? क्यों जो इतना सरल है क्यों नहीं ग्रहण करें? हाँ कम स्थित ऋतक ज्ञान प्रपद्यंत कामना वासना होने के कारण वो दूसरा को ये उदाहरण हम बहुत बार दिया है और एक बार देंगे। जो बंदर को जो मक्का के अंदर चना रखते हैं चला रखते हैं वो हाथ घुसे देते हैं तो मुट्ठी से पकड़ते हैं वो नहीं निकल सकते तो आदमी उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन क्या बंदर क्या ये इतना कि भूल गया है तो आदमी उसका पकड़ लेगा? लेकिन भूल जाता है क्यों? बुद्धि नाश होता है क्यों? तो चना खाने का लोभ में वो भूल जाते हैं इतना बुद्धि नहीं मैं छोड़ दूंगा मैं भाग नहीं सकते ये बुद्धि नाश होता है। क्यों? चना के बुद्धि उसमें इतना आसक्ति है तो वो चना नहीं छोड़ते। हाँ जिस तरह हम देखते कोई लड़का लड़की के साथ प्रेम है उसके मालूम है इसको बड़े का उसका जीवन नाश हो नहीं मेरा कोई मैं नहीं सोचना चाहता मेरा भविष्य में क्या होगा नौ जाऊंगा जेल में जाऊंगा नहीं सोचना चाहता कितना क्रोधित हो जाते हैं। क्या होता है काम स्थित ज्ञान तो जब इस तरह कामना वासना से ज्ञान नाश होता है तो वो आदमी क्या करता है प्रबोधंत देवता कोई देवता को उपासना करते हैं और शिव प्रवृत्ति के अनुसार वो उस तरह देवता को भी पूजा करते हैं। जिस तरह प्रवृत्ति है इस तरह ने देवता का खुशी के लिए पूजा कर रहे हैं उनका खुशी होने के लिए उनका प्रवृत्ति के अनुसार उन्होंने देवता पूजा कर रहे हैं। तो कृष्ण कहता ठीक है वो जो श्रद्धा के साथ कर रहा है वो श्रद्धा भी मैं भी दे रहा हूं जो जो जांग जांग तुनु भक्त श्रद्धा इच्छति तस्य तस्य अचलं श्रद्धा तामेव विदधाति। तो वो जो देवता का श्रद्धा के साथ पूजा करता है वो श्रद्धा भी मैं भी देता हूं और वो श्रद्धा लेके वो देवता को जब पूजा करते हैं और देवता लोग खुशी होकर उनको भी देते हैं और देवता कहां से देते हैं? वो देवता कहां से देते हैं? वो भी मेरा बच्चे लेके देते हैं। तो किसने देखो इतना कुछ सुनने के बाद भी आदमी देवता पूजा गीता पढ़ने के बाद देवता पूजा करते हैं। किसने बोलता है जिसे कामना वासना कहता है बुद्धि नाश है देवता को पूजा करते हैं और वो देवता पूजा करना जितना श्रद्धा मैं देता हूं और वो खुश होकर देवता लोग जो देते हैं वो मैं देवता को देता हूं और मेरा पास लेके वो लोग तुमको देते हैं इतना कुछ जानने के बाद भी देवता पूजा करेंगे तो वो लोग क्या है जितना बुद्धि कम है? तो आदमी बोले ठीक है हमें बुद्धि कम है फिर वो हमारे लिए अच्छा है हम वो देवता पूजा करेंगे। तो किसने कहता है ठीक है लेकिन और एक गलती बताऊंगा उसका क्या है अंतवत्त फलम पेशा देवता लोग तुमको जो देते हैं ना एक दिन वो नाश भी हो जाएगा, ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। अंतवत्त फलम पेशाम तब भगवती अल्प में देश। और उसको जो अल्प बुद्धि संपन्न लोग क्या करते हैं उस तरह देवता पूजा करते हैं, और जो फल प्राप्त करते हैं वो क्या है, वो फल है नाशवान है अंतवत्त। और अच्छा एक बात बताऊंगा, क्या उनको पूजा करोगे उनको पास जाओगे और मेरा पूजा करोगे मेरा पास आओगे, ये तो समझना तो कठिन बात नहीं है। आप मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गए तो एमबीबीएस बनने के आओगे, और आईआईटी में भर्ती हो गए तो बीटेक बन के एमटेक बन के आ जाओगे, ये तो सिंपल बात है। तो किसने बोलना है देवता के पास जाओगे देवो लग जाओगे और मेरा पूजा करोगे तो मेरा पास आओगे, तो अभी देखो क्या करना चाहते तुम लोग। तो ये है देवता को जब अल्प बुद्धि तद भगवती अल्प मेधसाम। अल्प मेधसाम कौन है? देवता। और सुमेधसा कौन है? कौन है? जो भगवान को चैतन्य महाप्रभु उपासना करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सुनता सुलो कृष्ण वर्णं तिषा कृष्णं संग भंगस्थ पार्षदं यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। ये है जो हरिनाम करता है सुमेधा संपन्न है, और देवता पूजा करता है वह अल्प मेधस। ये हमारे बात नहीं है, शास्त्र की बात है, वेद उपदेश बल रहा है। इस तरह नहीं बोला हाँ आप ईश्वर का भक्त है इसलिए आपको ईश्वर का अगले ज्यादा बोल रहे हैं, ये हमारे भाषा नहीं है, वेद उपदेश की भाषा है। और 24 नंबर से लेकर और एक अच्छा बात है, ये देवता तो उपासना करते वो तो अल्प मेधस है, लेकिन जो निराकार ब्रह्म को उपासना करते बुद्धि नहीं है, अबुद्ध है। ये क्या बोला है? अव्यक्तम व्यक्ति महापन्नम मन्नते माम अबुद्ध है। जो लोग सोचते हैं भगवान कृष्ण निराकार है अव्यक्तम, अभी उन्होंने आकार प्राप्त आकार लिया है लीला करने के लिए, तो ये कौन बोलते हैं? कौन बोलते हैं? मायावादी निराकारवादी। तो किसने बोलते वो कौन है? अबुद्ध है। अबुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? बुद्धि नहीं। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्न मन्यते माम अबुद्ध है। क्यों? कि परम भाव अजानंत माम अव्यय मनुत्तम, वो नहीं जानते मेरा स्थिति क्या है, इसीलिए उन्होंने इस तरह करते हैं। तो अभी प्रश्न आते हैं, इतना सरल है भगवान की भक्ति करना और इतना अच्छा बेनिफिट है, फिर भी आदमी की देवता पूजा करते हैं, फिर भी निराकार ब्रह्म उपासना क्यों करते हैं? क्यों? भगवान बोलते मैं उनको प्रकाश नहीं होता हूं, ना हम प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समाप्त, मैं जोगमाया से जोगमाया के द्वारा मैं ढाका रहता हूं, मुझको नहीं सबको नहीं पहचान देता हूं। किसको? मुरुअंग नाभी जाना आती लोकमाम अजब, जो मूर है, मूर है वो, उसके पास में प्रकाश नहीं आता। एक आदमी मुझसे पूछा था, अरे आपका पूर्वपात की गीता तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज है पूर्वपात बहुत गाली दिया है। मैं कहा गाली दिया है? ये शास्त्र में गाली किया है? बोले नहीं, पूर्वपात बोला मूर गाढ़ा बुद्धिहीन इस तरह अलग अलग। तो मैं बोला इसीलिए पूर्वपात का गीता का नाम एज इट इज, कृष्ण ने गाली दी है इसीलिए पूर्वपात ने भाषा यूज किया, इसलिए वो गीता का नाम एज इट इज है, यथारूप है। तो कृष्ण गाली दिया तो हम क्यों नहीं गाली देगा? जब हम से गाली नहीं देगा तो इसका अर्थ क्या है? हम उसके साथ थोड़ा फ्रेंडशिप है, कृष्ण गाली दे रहा हम गाली देने से डर रहा है, क्योंकि हमें थोड़ा उनके साथ प्रेम है, इसीलिए हम कृष्ण गाली दे रहा है, हम क्यों गाली नहीं देगा? कृष्ण मूर्ख बोला हमको मूर्ख बोलना चाहिए, नरसिंह बोला हमको नरसिंह बोलना चाहिए। हम जब नहीं बोल रहे हैं इसके अर्थ हम कृष्ण का साथ इतना प्रेम नहीं है जितना इनको साथ है। बोलना चाहिए चोर को चोर बोलना चाहिए, हम चोर बोलने का डर रहा है, क्योंकि उनके साथ हमारा प्रेम है, जिन्होंने चोर बोला है उसके साथ हमारा प्रेम नहीं है, वो तो बोल रहा है चोर है, हम क्यों नहीं बोलेंगे?
बोलना चाहिए चोर नराधम बोलना चाहिए। हम तो इतना नहीं देखा कहाँ कहाँ है। रामकृष्ण मिशन में एक महाराज ने पूरा पुस्तक ढूंढ के देखा पूरी बात कितना कितना गाली दिया है। हाँ पुअर फंड ऑफ नॉलेज रास्केल फूलिश हाँ इस तरह कितने कितने बहुत बोले पूरी बात इस तरह भाषा यूज किया है। कैसे हम नहीं देखा वो लोग ढूंढ रहे देखो ताकि उनका चोर का मालूम है। हमको क्यों हमको तो बहुत व्यवस्था नहीं लगता हमको गाली दे रहा है हमको लगता है पूर्व हमको गाली दे रहा है तो जिसको लाग रहा है हमको गाली दे रहा है। हम हमारे कभी भी नहीं लगा पूर्व हमको गाली दे रहे हैं। तो पूर्व कहता है हाँ ये मुरलोक नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूं विदाम समुचितानी वर्तमान अर्जुन भविष्यान के बुझाने मांग तो बिना कष्ट मैं अतीत वर्तमान भविष्य सब जानता हूं लेकिन कोई मुझको नहीं जानता तो कौन कब जान सकते भगवान को। हाँ जब भगवान के शरण लेते हैं तब ये स्थिति होते हैं इच्छा देशे समुत्थन द्वंद्वमय भारत सर्वोदय सम्मान सर्व जानते परंतु क्योंकि ये आगे बढ़ना तो कब शरण लेते हैं ये वर्णन करने पहले क्यों शरण नहीं लेता है वह अर्थ द्विअक्षलक कृष्ण वर्णन कर रहे हैं। जब अनुकूल विषय में इच्छा होता है प्रतिकूल विषय में द्वेष होता है हाँ ये इच्छा द्वेष से क्या होता है द्वंद्व होता है द्वंद्व मतलब मोह आता है हमारी इच्छा है सना सब्जी पुनी सब्जी हमको ज्यादा देना चाहिए ज्यादा दिया नहीं वह अनुकूल विषय है आसक्ति है लेकिन दिया नहीं क्रोध आ गया और जो प्रतिकूल विषय जो हम नहीं चाहते वो हमको दे दिया है लेकिन वह भी क्रोध आ गया। हाँ जब इस तरह होता है तो यह से द्वंद्व भाव उत्पन्न होता है। हाँ तो इस तरह जीव मोहग्रस्त होकर ये भौतिक जीवन भौतिक जगत में जन्म ग्रहण करते हैं और जन्म ग्रहण करने के बाद वो सीखते हैं कौन सा अच्छा कौन सा बुरा ही है और पिता माता भी वही शिक्षा देते हैं स्कूल कॉलेज में वही भी शिक्षा देते हैं जिस तरह हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को शिक्षा देते हैं ये तुम्हारे शत्रु है ये तुम्हारे मित्र है। प्रहलाद महाराज क्या फिर मैं सीखने के लिए आया हाँ शत्रु मित्र सिखाने के लिए नहीं सीखूंगा ये शिक्षा है। हाँ द्वंद्व मोह सिखा रहे हैं हम तो द्वंद्व मोह के लिए जन्म ग्रहण किया स्कूल कॉलेज में आसपास सब ये भी शिक्षा दे रहे हैं लेकिन कौन एवं मुक्त हो सकते हैं। हाँ जिशांग तो अंतर्गत पापम जननांग पुण्य पुण्य कर्म के द्वारा जिसका पाप विनाश हो गया है वो केवल क्या करते हैं ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त वो ये द्वंद्व भाव से मुक्त होके भगवान का दृढ़ रूप से भक्ति करते हैं। जरा मरण मोक्षाय ममात्त जतन के ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम उद्धातम कर्मचार इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है जरा बुरापा मृत्यु से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त करने के लिए साधन करते हैं और वो ब्रह्मभूत स्तर में आ जाते हैं यह जीवन का चरम लक्ष्य। तो यह जानने के लिए कृष्ण ने कहते हैं वो जानने के लिए भगवान का प्रकृति को सही ढंग से जानना चाहिए। यह अध्याय कहां से शुरू हुआ एक प्रकृति के वर्णन कर रहे हैं तो फिर कृष्ण बोला उसको और अच्छा ढंग से जानना चाहिए किस तरह जानना चाहिए भगवान को प्रकृति को शादी दैव शादीभूत शादी योग्य ये चीज है जानना चाहिए और कम से कम प्रयाण काल मृत्यु के टाइम तो जानना ही चाहिए प्रयाण काले ओपी चमांगते विदुयुक्त चेतस समाहित तो ये भगवान को प्रकृति को हमें शादीभूत शादी योग्य शादी दैव इस तरह जानना चाहिए कम से कम मृत्यु के समय। तो अभी वह क्या चीज है वह जानने के लिए और हमें वेट करना पड़ेगा अगले दिन अष्टम अध्याय में यह चीज वर्णन हो रहा है। ये जब प्रश्न हो रहा है तो जब ये बोला तो अर्जुन में मन प्रश्न आया तो उन्होंने अर्जुन बोला यह क्या चीज बोला है शादी योग्य शादी दैव ब्रह्म अध्यात्म ये किया है और प्रेम काले कई चार प्रजान सकते इस तरह सात प्रश्न पूछा प्रश्न मध्य में हम आगे लेंगे। हरे क्या प्रश्न है
सुनने के बाद
यह
है
कि और
सुनने के बाद
भी प्रश्न आया पूरा तत्व जो लास्ट में 15 नंबर श्लोक था 15 नंबर श्लोक में लास्ट में बोला साधु के बाद महाजन तो साधु नहीं महाजन पूरा ये शब्द महाजन का शब्द सुनने के बाद भी नहीं आते इस तरह नहीं है महाजन का शक्ति उनका से कम है लेकिन वो उनका कितना खतरनाक है समझाने के लिए प्रश्न पाते हैं महाजन चाहते किसी को भक्त भगवान को लेकर जा सकते लेकिन महाजन के भी हमेशा तो आइन तो लग्न नहीं करते हैं महाजन आते के आइन के अनुसार चलते हैं लेकिन महाजन जी चाहते हैं किसी को भगवान लाना हो जा सकते लेकिन उन्हें भी आइन कानून के अंदर चलते हैं ना लेकिन वो आइन का जो ये जो जो दुष्कृति वाले हैं वो छोड़ने के बाद भी उसको कृष्ण भक्ति में नहीं आता
चौथे श्लोक में जो 8 प्रकार
के बताया उसकी बताइए अपरा प्रकृति हाँ मन बुद्धि अहंकार 3
सूक्ष्म बात कर रहे थे कि मन की पिटाई करना चाहिए
आपको बच्चों का शासन करते हैं बच्चों का शासन करते हैं करते हैं है क्या तो क्या आपका संतान कि भगवान की संतान है किसके संतान है किसके है बोलने डर क्यों है ठीक है आपका है लेकिन भगवान कहते हैं तो उनका क्यों शासन करते हैं शासन करते इसीलिए भगवान आपको दिया उसका जिम्मेदारी उसको कृष्ण होते आगे बढ़ाने के लिए जितने भी ये मोहन सब कुछ भगवान के है लेकिन हमको दिया है ये शरीर है ये भी भगवान के है ये शरीर 5 स्थूल उपादान 3 सूक्ष्म उपादान सारी चीज भगवान के है लेकिन हमको गिफ्ट दिया है ये गिफ्ट दिया और इसको हम क्या करना चाहिए भगवान ने सेवा में लगाना यदि गुरु महाराज आपको कुछ चीज देगा तो क्या करना चाहिए उस चीज में गुरुदेव की सेवा करना चाहिए तो भगवान यदि हम कुछ देगा तो क्या करना चाहिए वैसे भगवान को सेवा करना चाहिए तो भगवान हमको ये 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म उपादान दिया ये ऐसे क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए हाँ और जी सेवा नहीं करेगा तो नहीं करेगा तो हाँ क्या करना चाहिए हाँ विजय करना चाहिए स्वीकृति बहुत प्रकार है वो स्वीकृति अज्ञात स्वीकृति अज्ञात हमें ज्ञात जो मालूम नहीं और स्वीकृति स्वीकृति काम अच्छा काम वो अच्छा काम किया है हमें पता नहीं इसलिए अज्ञात स्वीकृति कब किया पिछले जन्म में इसलिए अज्ञात वो स्वीकृति बहुत प्रकार होते हैं ज्ञान उन्मुखी स्वीकृति जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ कर्म किया इसलिए ये जन्म में जन्म के बाद बहुत विद्वान है एक स्वीकृति है भक्ति उन्मुखी स्वीकृति पिछले जन्म इतना अच्छा काम किया है तो जिस तरह हम नारद मुनि देख रहे हैं नारद मुनि भक्ति विदांत को सेवा के भजन का है वो स्वीकृति हो गया तो वो स्वीकृति कारण तुरंत भक्ति प्राप्त कर
चतुर्विधा भजन के मां नाटक अर्थात जिज्ञासु
प्रश्न है चार प्रकार से गोपियों का स्टेज कौन है ये तो कनिष्ठ है ये चार प्रकार कनिष्ठ है तो कनिष्ठ को है मध्यम और मध्यम उसके ऊपर है उत्तम और उत्तम के जो ऊपर है वो है गोपी ये तो सही आता है।
भगवान भक्त ये सर हिंदू का
कौन सा
आंतर सर ज्ञानी
कनिष्ठ भक्त
ऐसे कोई भक्त ऐसे कोई बीमारी होते हैं और कोई खास हालत होती है भगवान का शरण लेते हैं ये क्या अर्थ भक्त है
बीमारी लिए
ऐसे
बीमारी के लिए भगवान के शरण में आते हुआ
ऐसे भक्त हो गए जैसे कोई स्कंद का भक्त कोई प्रॉब्लम आ रहा है भगवान का ज्यादा
भगवान के शरण में आता है नहीं ये अर्थ तक कष्ट के लिए भगवान के पास आया ये अर्थ है लेकिन फिर हम कष्ट के कारण फिर भगवान के ज्यादा भक्ति कर रहा है वो अर्थ का इलेक्शन है लेकिन बाकी विप्र कुष्ठ विप्र उनका कीड़ा है कीड़ा शरीर से गिर रहा है तो फिर उठा के शरीर में रख रहा है क्यों उन्होंने सोच रहा है ये कीड़ा कहां जाएगा ये नहीं तो मर जाएगा तो इसलिए उन्होंने उठा के रखा था फिर उनको जीना चाहिए उनके ये भाव उन्होंने कभी गया भगवान के पास भगवान मैं इतना दिन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 आप किसी को नहीं देख रहे मेरा पास मैं इतना गलती किया ताकि मेरा एक बीमारी इलाज नहीं हो रहा है कभी बताया लेकिन महाप्रभु आलिंगन करने के बाद जब शरीर शुद्ध अच्छा हो गया तब उन्होंने रोने लगा क्यों तो बोले महाप्रभु आप क्या कर दिया आगे तो मेरा अहंकार हो जाएगा सुंदर देह प्राप्त तो अहंकार आप भक्ति नाश हो जाएगा मेरा तो मेरा पहले जिस तरह से उस तरह दीजिए ये भक्त का मनोभाव भक्त बीमारी के लिए भगवान के पास जा सकते लेकिन किस तरह जिस तरह प्रभुपाद जब छड़ी छोड़ रहा था तो भक्त लोग को बोला है प्रभुपाद के पास जिज्ञास के प्रभुपाद हम भगवान के पास प्रार्थना करेंगे आपको जल्दी जल्दी दे रहा है प्रभुपाद तो परमिशन नहीं दे रहा है तो लास्ट में जब सुना इस तरह प्रभुपाद को बोला प्रभुपाद आप जानते हैं हम कितना नया नया सीखे भक्त आप कुछ मालूम नहीं है आप चला जाएगा हमारे भक्ति किया होगा हमारे लिए कम से आपको रहना चाहिए तो बहुत बात प्रभुपाद बोला ठीक है तुम लोग इस तरह प्रार्थना कर सकते भगवान हे कृष्ण आप यदि चाहते हैं तो हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद को और कुछ दिन हमारे भक्ति के लिए उनके दुनिया में रखते ये भक्त का मन हमारी बीमारी हो गई है भगवान इतना दिन से भक्ति कर रहा हूँ जप कर रहा हूँ क्या बीमारी अभी तक इलाज नहीं हो रहा है आप यदि इलाज हो जाए काशी में ट्यूशन वाला करूंगा तो आर्थ भक्त का लक्षण है आरती मांग रहा है उन्होंने विभद संतु उन्होंने आरती मांग रहा है आरती के आर तो इलाज नहीं चाहता है वो आरती और चाहता है उन्होंने नहीं बोला है हे कृष्ण मरा कुछ जो आरते भक्त का थे लक्षण है आरते का जस्ट अपोजिट है आरती उन्होंने आर तो होना चाहते हैं कहा तो क्या जिकेशु पहले आगे स्टेज है गेम जिकेशु जानना चाहते हैं जिस तरह अपने विचरण में किया है यह हमारे जीवन का लक्ष्य किया है लेकिन गेमी और ये स्तर को भी आगे है ताकि भौतिक जगत का उनका ये जो भौतिक जगत कुछ है नहीं दुखालय अशाश्वत बुरा भोली वचन का माध्यम ये जगत के साथ उनका कोई संपर्क नहीं फिर भी वो लोग भक्ति में आया नहीं वो स्तर में वो ज्ञानी स्तर
जीव और आप तीन जो मेन गुरु के जन बहिरा अंतरंग शक्ति तदस्थ विश्व तदस्थ शक्ति बहिरंग शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं दुर्गा अंतरंग का साधन जीव ऐसा कोई है जो जिसका जीव को
प्रश्न है बहिरंग शक्ति का नियंत्रण है दुर्गा देवी अंतरंग शक्ति का नियंत्रण है जोगमाया तो जीव जो तटस्थ है वो किसका है उनके दोनों का है इसलिए तटस्थ कभी कभी दुर्गा द्वारा नियंत्रित होता है कभी कभी जोगमाया द्वारा नियंत्रित वो जिसका आत्मस्मृति आत्मसमर्पण करता है उन्हें नियंत्रण करता है माया को भी आत्मसमर्पण दुर्गा देवी नियंत्रण करते हैं जो जब कृष्ण के प्रति शरण करता है जोगो मैं नियंत्रण कर अलग इसीलिए मैं तपस्या तपस्या क्या है तट बोल के कोई भाषा नहीं है तट क्या है वो हवा नहीं तो पानी अलग कोई शब्द नहीं है हवा नहीं तो पानी तो उसका अलग कोई अस्तित्व नहीं है तो तपस्या की कोई स्वतंत्र नहीं है वो माया जोगो माया नहीं तो महामाया का अंदर नहीं अलग तो नहीं है हमेशा किसी को ना किसी नियंत्रण में गीता में कृष्ण बोला जिस तरह जो एक चैप्टर से अलग अलग समझेगा वो बाल बुद्धि शंकर प्रबोधन तीखा पंडिता पंडित व्यक्ति इस तरह अलग नहीं देखते शंकर जी को पृथक बाला जो बाल बुद्धि है बच्चा की तरफ बुद्धि है वो अलग देखते हैं शंकर जी को पृथक बाला प्रबोधनती ना पंडित है पंडित व्यक्ति अलग नहीं देखता है पूरे गीता के अंदर है क्या एक ही बात है सर्वधर्म परित्यज मानव शरणागत इसके अंदर है क्या इसके अंदर कौन सा शब्द है जी या सर को दूसरा कोई शब्द है किसने सब कुछ क्या बोलना चाहते हैं सब कुछ सिर्फ मेरा पसंद आता है यह सर का दूसरा शिक्षा देने का किसने का कोई प्लान है क्या लग रहा है
राज
भी देते जिसके ऊपर विद्या नहीं तो यह तो है सर्वधर्म परिचय वह तो सर्वधर्म परिचय वो राजनीति में क्या था लास्ट में क्या था मन मान अभाव मत भक्त तो कौन से आपको कौन सा अलग लग रहा है
नहीं अलग नहीं लग रहा है लेकिन ऐसा
व्यक्ति
बोल रहा
है हाँ पूछना ये आप पूछ सकते एक ही चीज बार बार क्यों बोल रहा है ये आप बोल सकते लेकिन इसने एक अध्याय में एक है दूसरा अध्याय में एक है किसने इसको महिमा एक बार बोला उसको एक बार महिमा बोला ये नहीं है सभी एक है लेकिन आपका प्रश्न हो सकता है बार बार क्यों बोल रहे हैं बार बार इसीलिए बोलना पड़ेगा जो अल्प बुद्धि है ना उसे बार बार बोलना पड़ेगा बुद्धिमान व्यक्ति उसके एक बार बोलने काफी है हमें विश्वास नहीं है भगवान का बुद्धि से बार बार बोल रहे हैं और आचार्य जी ने और एक बार बताया शास्त्र में कभी एक ही चीज दो बार तीन बार देखेंगे इस तरह नहीं बैलते भूल गया किसने भूल गया फिर दूसरा बार बोल रहा है इस तरह नहीं दूसरा बार बोलने को एम्फेसिस शक्ति बदल का हाँ इतना इंपॉर्टेंट है मैं एक बार बोला अभी भी बोल रहा हूं इस तरह नहीं किसने भूल गया मन मानो एक बार बोल दिया नवम अध्याय में 34 फिर अष्टादश अध्याय में 65 फिर मन मानो हो किया है भूल गया क्या इतना 15 मिनट के अंदर भूल गया अलग से बोल दू नहीं है यह इतना इंपॉर्टेंट है किसने को दोबारा बनना पड़ेगा हाँ शक्ति प्रदान करेगी जगत गुरु शिल प्रभात सावे गौरव